आपको इस दुनिया से गए सालों बीत गए अनु, पर आज भी आपके बिना जीने की आदत नहीं हुई मुझे। आज भी जब नींद खुलती थी तो नज़रें सबसे पहले आपको तलाशती थीं। आज भी अनु कॉफ़ी ला दीजिए, अनु कपड़े निकाल दीजिए कह बैठ जाता था। फिर जब आप नहीं आती थीं तो एहसास होता था कि आप तो मेरे पास हैं ही नहीं। पता नहीं आपको किस बात की इतनी जल्दी थी, थोड़ा इंतज़ार कर लेती तो हम दोनों एक साथ इस दुनिया को अलविदा कहते। पर आपको मुझे इस दुनिया में तन्हा तड़पते देखना था, इसीलिए सब जिम्मेदारियां मुझे सौंपकर खुद हर मोहमाया त्यागते हुए रिश्तों के बंधनों से आज़ाद होकर मुझसे दूर चली गई। पर मैं नाराज़ नहीं हूं आपसे, क्योंकि आप जाते जाते मुझे अपनी यादें संजो कर दे गई थीं। आपकी डायरी याद है आपको, जब आपने मुझे कहा था कि आपके न रहने पर वो डायरी और उसमें बसी यादें मुझे आपके होने का एहसास करवाएंगी, तो कितना नाराज़ हुआ था मैं आप पर। पर आज आपकी वही डायरी मेरी सांसों के चलने की वजह बनी है। मैं रोज़ आपकी डायरी को पढ़ता था, उसमें से आती आपकी खुशबू को अपनी सांसों में बसाता था, महसूस करता था आपके स्पर्श को जो मुझे आपके मेरे पास होने का एहसास करवाती थी। जब आप मुझे अचानक छोड़कर चली गई थी तो मुझे लगा था जैसे मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकूंगा। पर देखिए, आज आपको इस दुनिया से गए पूरे 4 साल हो गए हैं, पर मैं अब भी जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे जीने की वजह मेरे बच्चे मेरे पास हैं। वो मेरे पास आपकी अमानत है और मुझे उनके लिए माँ और बाप दोनों के फ़र्ज़ निभाने थे। उन्हें सेटल होते देखना था, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना था, और अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूँ। आदि एक काबिल सर्जन बन गया है, अपनी मोहब्बत से विवाह के अटूट बंधन में बन चुका है। अद्दू ने अपना सपना पूरा कर लिया है और मैंने उनका हाथ भी एक काबिल और समझदार हमसफर के हाथों में सौंप दिया है, जो कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा और उसे हमेशा खुश रखेगा। अब मेरे पास आपसे दूर रहकर जिंदगी के इस बोझ को ढोने की कोई वजह नहीं है। अब वक्त आ गया है कि मैं जिंदगी के मोह को त्याग कर आपके पास आ जाऊं। बहुत इंतज़ार करवाया मैंने आपसे, आप राह देखती होंगी मेरा। आ रहा हूं मैं आपके पास, अब हमारा मिलन उस दुनिया में होगा जो जन्म और मृत्यु से परे है। स्टडी टेबल के सामने बैठे अक्षय ने ठंडी आह भरी। आंखों पर लगे चश्मे को हटाते हुए उसने आंखों में आई नमी को पहुंचते हुए नज़र बेड की ओर घुमाई। निगाहें बेड के पीछे की दीवार पर लगी तस्वीर पर जाकर ठहरी। उसकी बूढ़ी हो चुकी आंखों को कुछ संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर वो तस्वीर साफ नजर आई। वो उनकी शादी की तस्वीर थी। अक्षय की निगाहें आहाना के चेहरे और झुकी पलकों पर जाकर ठहरी और लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई, जिससे आंखों के नीचे कुछ रेखाएं नजर आने लगीं। कितना अंतर था उस तस्वीर में दिखते अक्षय और आज के अक्षय में। जिंदगी के संघर्षों ने उसके सुडौल शरीर को कमजोर कर दिया था, बालों में सफेदी आ गई थी, पर उन बूढ़ी आंखों में आज भी आहाना को देखकर वही जज्बात उमड़े थे और दिल की धड़कनें उसके ख्याल मात्र से बढ़ गई थीं। निगाहें एकटक उसके चेहरे को तकने लगी थीं। वो काली रात कट चुकी थी, नया सवेरा हो चुका था। बालकनी से आती सूरज की किरणें पूरे कमरे में बिखर कर उसे रोशन कर गई थीं, पर अक्षय की सुबह अब तक नहीं हुई थी। घड़ी ने 8 बजाए और उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक 26-27 साल के लड़के ने कमरे में प्रवेश किया, जिसके फेशियल फीचर्स अक्षय से बहुत मिलते थे। ये था आद्रिक उर्फ आदि। कमरे में कदम रखते ही आदि की नज़र साइड टेबल पर सर टिकाई कुर्सी पर बैठे अक्षय पर पड़ी और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। पापा, आप अब तक सो रहे हैं? पापा उठिए, मासी नाश्ते के लिए बुला रही है। पापा, आप कभी इतनी देर तक तो नहीं सोते, फिर आज क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? अनगिनत सवाल करते हुए आदि उसके पास पहुंच चुका था। अक्षय कभी इतनी देर तक नहीं सोता था, इसीलिए वो हैरान भी था और परेशान भी। उसने हाथ बढ़ाकर अक्षय के शरीर का तापमान जानने की कोशिश की कि कहीं उसे बुखार तो नहीं, पर जैसे ही उसकी हथेली के पिछले हिस्से से अक्षय के माथे को स्पर्श किया, उसका सफेद पड़ गया। उसने हड़बड़ाहट में अक्षय का हाथ थामा, भय से कांपते हुए उसके नाक के नीचे 2 उंगली लगाकर चेक किया। अक्षय का शरीर एकदम ठंडा था। सांसें जाने रात के किस पहर में थमी थीं, जाने किस घड़ी में उसने अपने प्राण त्यागे थे। उसके पास खड़ा आदि इस हकीकत पर विश्वास नहीं कर सका। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि पहले उसकी मम्मी और अब उसके पापा ऐसे अचानक उसे छोड़कर चले गए। वो बदहवास सा अक्षय को उठाने की कोशिश करने लगा, कभी उसके चेहरे को छूता तो कभी कंधे को पकड़कर हिलाता। उसकी आंखें बरस रही थीं और रुंधे शब्द बिखरने लगे थे। पापा पापा आंखें खोलिए, पापा आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। पापा पहले मम्मा हमें छोड़कर चली गई, अगर आप भी चले गए तो हम अनाथ हो जाएंगे। पापा पापा प्लीज अपनी आंखें खोलिए पापा। आदि किसी छोटे बच्चे जैसे रो रहा था, अपने पापा को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाजें सुनकर धीरे धीरे बाकी सब लोग भी वहां आ गए। इस अप्रत्याशित घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। अक्षय को खोने का गहरा सदमा लगा था उन्हें। अन्वय ने किसी तरह आदि को संभाला। अद्दू, जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और कल ही पगफेरे के लिए आई थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। अयान ने अन्वय की मदद से अक्षय को कुर्सी से उठाकर बेड पर लिटाया। इस दौरान एक फोल्ड पेपर फर्श पर जा गिरा, जिसे कुर्सी के पास खड़ी अंतरा ने उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगी। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है, शायद मैं कल का सूरज भी न देख सकूं, एक आखिरी बार सबसे मिलकर उन्हें अलविदा न कह सकूं, पर कुछ बातें हैं जो मैं सबसे कहना चाहता हूं। पहले अनु और अब मेरे ऐसे दुनिया से जाने से हमारे बच्चे टूट जाएंगे, कोई नहीं होगा उन्हें संभालने वाला। माँ बाप को खोने का दुख मैंने भी सहा है, इसीलिए उन दोनों की बहुत चिंता है मुझे, पर मैं जानता हूं कि इस घर में उन्हें संभालने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं जो उन्हें टूटकर बिखरने नहीं देंगे। अंतरा, तुम उन दोनों की मासी हो, हमारे अद्दू अलादी को माँ का स्नेह और प्यार देना। अन्वय, मेरे बाद तुम इस घर के बड़े हो और रिश्ते में उन दोनों के चाचा। अपने भाई पर इतना उपकार करना कि उन्हें कभी इस बात का एहसास मत होने देना कि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं इस परिवार की जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप कर जा रहा हूं, इस परिवार को एक धागे में पिरोकर एक साथ रखना। अयान, तुम आदि और अद्दू के बड़े भाई हो, उनकी हिम्मत बनना, उन्हें संभाल लेना, तुम्हारे भाई बहन को अभी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। आदि, अद्दू, आप दोनों को मेरे जाने का गहरा सदमा लगा होगा, पर बच्चों मेरे जाने पर दुखी मत होना, आपकी मम्मा ने आपके पापा के कारण बहुत दर्द और तकलीफ सही थी और अपने उन्हीं गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं मैं। ये जो वक्त मैंने तुम्हारी मम्मा के बिना बिताया है, ये उनकी आंखों से निकले आंसुओं की कीमत चुकाई है और अब मेरी वो सजा खत्म हो रही है। मैं आपकी माँ के पास जा रहा हूं, तो खुशी खुशी मुझे विदा करना। याद रखना कि हम तुम्हारे पास हो या ना हो, पर हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे मम्मी पापा भले ही अब तुम्हारे साथ नहीं, पर आपका पूरा परिवार आपके पास है। हम आप दोनों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो अपने मम्मी पापा की आत्मा की शांति के लिए आप दोनों खुश रहिएगा, एक दूसरे का सहारा बनिएगा। बस इतना ही लिखा था उसमें, जिसे पढ़कर सबका दिल रो रहा था। आंखें नम थी पर लबों पर खामोशी छाई थी। लेटर पढ़ने के बाद अद्दू ने कांपते हाथों से टेबल पर रखी डायरी उठाई। वो पहचानती थी उस डायरी को।